आज सद्भावना के अभाव से ही चारों ओर नफरत और घृणा का भाव पैदा हो चुका है। इसके फल स्वरूप आए दिन झगड़े, दंगे, मारामारी सब चलता ही रहता है। अतः सकारात्मक परिवर्तन आ जाए, क्योंकि समय की यही मांग है कि अब हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए और सबके प्रति सद्भावना आ जाए, तो ये सब समस्या सुलझ जाएगी। एकता व सद्भावना जैसे मानवीय मूल्यों का वर्तमान समय में बहुत ही मांग है। प्रातःकाल से हम सभी ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं और आप सभी का मन का मोह थिरकने लगा होगा। अब इस प्रवचन से मन का मोर नाच उठेगा जब आप आदरणीय स्वामीनाथन भाई को सुनेंगे, उनकी शानदार, जानदार, धुआंदार, मजेदार प्रस्तुति के लिए हम सभी तैयार हो जाए तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय स्वामीनाथन भाई को, जो आज के विषय पर प्रकाश डाले। मेहमानों का हम फूलों के द्वारा, बैच के द्वारा स्वागत करते हैं।
ओम शांति। ऑनरेबल चेयरपर्सन ब्रदर जोगिंदर सिंह भाई साहब, आदरणीय कोकिला बहन जी एंड माय डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द ऑडियंस, आप सभी का इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। और सत्र का विषय है जर्नी विथ हार्मनी, सद्भावना के साथ यात्रा। फ्रेंड्स, एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक यात्रा कर रहे थे फर्स्ट क्लास के एसी कंपार्टमेंट में, वेल नोन साइंटिस्ट, और टीटीआर आए कंपार्टमेंट में सभी के टिकट चेक करने के लिए। और जैसे इस वैज्ञानिक को देखा तो उनको बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, सर आप तो इतने महान ग्रेट वैज्ञानिक आज हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, सर ये तो हमारा भाग्य है, सर आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई, मैं चाहता हूं कि आपके साथ बैठकर मैं बहुत बातें करूं, बट सर आई एम ऑन ड्यूटी राइट नाउ, मैं बाद में आकर मिलूंगा, कैन आई हैव योर टिकट प्लीज। तो वैज्ञानिक ने कहा व्हाई नॉट, और वो अपने टिकट को ढूंढने लगे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रही थी। तो टीटीआर ने कहा, सर नथिंग टू वरी, मुझे मालूम है आप टिकट जरूर लेकर चढ़े होंगे, आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, सर मैं एक डेढ़ घंटे में वापस आता हूं दूसरों के टिकट चेक करके, तब तक प्लीज आप अपना टिकट ढूंढ कर रखना, ओके। और टीटीआर गए। कुछ समय के बाद जब वो वापस आए तो देखा हमारे वैज्ञानिक साहब बहुत उमंग उत्साह के साथ टिकट ढूंढ रहे हैं। तो टीटीआर आए और उन्होंने पूछा, सर एनी प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा, मुझे अपनी टिकट नहीं मिल रही है। तो ऑफिसर ने कहा, सर कोई बात नहीं, क्योंकि आपने देश के लिए सचमुच बहुत सेवा की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर टिकट लेकर चढ़े होंगे, कोई बात नहीं, आज मैं आपको माफ करता हूं, करके ऑफिसर जाने लगे। दो मिनट पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा, वो वैज्ञानिक उसी उमंग उत्साह के साथ टिकट ढूंढ रहा है। फिर वो ऑफिसर आते हैं, धीरे से उस वैज्ञानिक को टच करते और कहते हैं, सर मैंने कहा था ना कि आपको टिकट नहीं चाहिए, सर फिर आप उसी उमंग उत्साह के साथ टिकट क्यों ढूंढ रहे हो? तो वैज्ञानिक ने कहा, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगी मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे उतरना कहां है। अंटिल आई डू नॉट गेट माई टिकट, हाउ डू आई नो वेर एम आई सपोज टू गेट डाउन? जस्ट वन मिनट, एंड दिस एन अनाउंसमेंट, मिस्टर योगेश टैंक, कोटक महिंद्रा मुंबई, प्लीज कॉल मिस्टर पंकज और मिस्टर मेहर ऑफ कोटक मुंबई इमीडिएटली बाई फोन। मिस्टर योगेश टैंक, कोटक महिंद्रा मुंबई। वैज्ञानिक ने यह कहा कि जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगी मुझे पता कैसे चलेगा मुझे उतरना कहां है. फ्रेंड्स समथिंग लाइक दिस, इफ वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू रीच देयर. अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहां जाना है तो मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे. लेकिन हां, जहां तक यात्रा का सवाल होता है एक बात जरूर है जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप. हमारी जो यात्रा होती है ना वो भले 1000 miles की क्यों ना हो लेकिन एक सिंगल स्टेप से वो आगे बढ़ता है. और आप बता सकते हैं कि वो फर्स्ट सिंगल स्टेप कौन सा हो सकता है. व्हाट इज द फर्स्ट सिंगल स्टेप. एंड द फर्स्ट स्टेप इज होप. ये विश्वास कि यस हम अपने मंजिल तक जरूर जरूर पहुंच जाएंगे. ये पहला कदम हमको उठाना है. बहुत अच्छी बात ये लिखी हुई है. कहते हैं होप इज लाइक अ रोड इन द कंट्री बट देयर नेवर वॉज अ रोड बट व्हेन मेनी पीपल वॉक इन टू इट द रोड कम्स इन टू एक्सिस्टेंस. रोड पहले होता नहीं है लेकिन जब बहुत सारे लोग उस रोड पे चलते जाते तो ऑटोमेटिकली वो रोड क्रिएट होती है. और यहां पर मैं बात बताऊंगा कि आज जो आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को देख रहे हो इसके जो फाउंडर फादर हैं ब्रह्मा बाबा जिनको हम बहुत प्रेम से कहते हैं 1936 में उनको एक विश्वास आया कि यस एक नई दुनिया बन सकती है. पहला कदम उन्होंने उठाया और आज जैसे दादी जी कह रहे थे कितने लाख भाई बहने उस यात्रा पर चल रहे हैं और आज वो रोड बहुत क्लियर कट बन गई है. पहला काम स्टेप है विश्वास और उसके बाद हम बहुत सारे लोग जब हम उसमें चलने लगते हैं. यस, कौन सी वो यात्रा है. द जर्नी वी कॉल लाइफ. जर्नी तो हम बहुत करते हैं लेकिन आज का जो सेशन है वो है जीवन रूपी यात्रा. द जर्नी वी कॉल लाइफ. मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है. द लाइफ शुड बी पीसफुल एंड हैप्पी. शांतिमय होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए. दैट इज अवर डेस्टिनेशन. बहुत वंडरफुल बात कहते हैं. यस, हमको इस जीवन रूपी यात्रा को एंजॉय करना है लेकिन हैप्पीनेस इज अ कंप्लीट हार्मनी ऑफ थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस. एक सद्भावना है किसके बीच में, विचार हमारे कर्म और हमारी एक्शंस पर. थॉट्स विचार है हमारी वाचा मनसा वाचा कर्मणा. इन तीनों के बीच में एक सद्भावना जब होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में खुशी आती है. आप देखिए ये चित्र, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जहां पे सद्भावना एक कोऑर्डिनेशन एक हार्मनी का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मिलता है. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी गेट इज प्रकृति नेचर जहां 5 तत्वों के बीच में एक बहुत वंडरफुल सद्भावना होता है. अगर वो हार्मनी थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाए तो हम देखते हैं कितना ना प्रकोप हो जाता है. नेचर इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हार्मनी. हाँ, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है. व्हीकल, आप एक गाड़ी को भी देख लो, देयर इज अ हार्मनी बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड मशीन पार्ट्स. है ना, गाड़ी भी हमको मंजिल तक कब पहुंचाती है. उनके हर एक पुर्जा के बीच में कोऑर्डिनेशन है, एक हार्मनी है, एक सद्भावना है, तभी हम उसमें यात्रा कर सकते हैं. और खास यस हार्मनी इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर. है ना, आज हम भी अलग अलग जगह से यहां पहुंचे क्यों, एक सद्भावना था. अब देखो कितनों के बीच में, कितने डिपार्टमेंट के बीच में सद्भावना था. सद्भावना है भी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी, रिजर्वेशन, स्टेशन, सिग्नल, ट्रेन्स, ये तो बस ऊपरी स्तर पर मैं बता रहा हूं. लेकिन आप लोग जो सुबह शाम उसमें इन्वॉल्व हैं आप ज्यादा जानते हैं. सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, हार्मनी होना बहुत बहुत जरूरी है. और आज हम मंजिल तक भी पहुंच पा रहे हैं क्योंकि देयर इज अ हार्मनी. और आज मैं सच्ची बात बताता हूं, अगर हम अपने सिस्टम को पिछले 30 वर्ष और आज में कंपेयर करेंगे, ये खुशी की बात है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर है ये बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है. आप अग्री करते हैं. यस, देयर इज अ टेरिफिक इंप्रूवमेंट. है ना, आपको मालूम होगा जब हम बचपन में थे ना, तो जब हम जबलपुर से केरला आते थे तो जब भी हम ट्रेन में चढ़ते थे तो हमारी यात्रा शुरुआती होती थी झगड़े से, क्योंकि एक टिकट में 10 लोग होते थे. है ना, वहां से शुरुआत होती थी. बट थैंक्स टू द वंडरफुल रेलवेज एंड द रोड ट्रांसपोर्ट आज दैट इज नॉट एन इश्यू एट ऑल. आप कहेंगे ये कंप्यूटर सिस्टम जो है इसने हमें बहुत सहज बना दिया है. लेकिन जब हम फॉरेन और इंडिया को कंपेयर करते हैं, इट इज अप्रिशिएबल इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम इलिटरेसी है, एजुकेशन कम है, और उसके बाद भी सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है, इट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग. तो ऑन बिहाफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, हम आप सभी ट्रांसपोर्ट भाई बहनों का बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अपलॉड करते हैं, और आप जोरदार से अपने लिए तालियां बजाइए. या यू आर डूइंग अ वेरी वेरी वंडरफुल जॉब इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर. क्यों? अ हार्मनी है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में. यस, अब देखो परिवार में भी सद्भावना होना जरूरी है, इसलिए कहते हैं फैमिली, FAMILY, मम्मी डैडी और बच्चों के बीच में सद्भावना होगा तो वहां जरूर खुशी होगी. इसलिए कहते हैं फैमिली, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली, FAMILY, इट सेज फादर एंड मदर आई लव यू, FAMILY. आप जरूर इस विद्यालय की तरफ से जब आप वापस पहुंचेंगे ना, तो अपने बच्चों को ये गिफ्ट जरूर देना, है ना, फादर एंड मदर आई लव यू. एक बहुत वंडरफुल सद्भावना फैमिली में है. यस, दूसरा देखो, ऑर्गेनाइजेशन में भी सद्भावना होना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं टीम. टीम में भी सद्भावना है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीम? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. अगर उसमें हार्मनी होगी तो हम साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और अगर किसी टीम में सद्भावना नहीं होगी तो क्या होगा उसका रिजल्ट? क्या होगा उसका रिजल्ट? कहते हैं टुगेदर एवरीवन एनॉयस मी, सभी लोग मुझे एनॉय करते हैं ना. सो दैट इज जहां पे हार्मनी हो और जहां पे हार्मनी नहीं है. हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, बहुत धर्मों के बीच में भी सद्भावना होना बहुत बहुत जरूरी है, और ये जब सद्भावना होती है उसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. द कंसेप्ट, विश्व बंधुत्व का नारा तभी साकार होता है. लेकिन हम बात कर रहे हैं जीवन रूपी यात्रा में, और जब हम जीवन रूपी यात्रा की बात करते हैं तो लाइफ रिप्रेजेंट्स अ फोर स्ट्रिंग गिटार, अ फोर स्ट्रिंग गिटार, है ना. गिटार में भी जब म्यूजिक कब बजता है? जब हर एक इंस्ट्रूमेंट के बीच में एक बहुत वंडरफुल हार्मनी हो, सद्भावना हो. उसी तरह हमारा जीवन जो है वो फोर स्ट्रिंग गिटार की तरह है, और हर एक स्ट्रिंग रिजेंबल्स वन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. वो चार स्ट्रिंग कौन कौन से हैं? सद्भावना होना चाहिए इन फिजिकल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक. ये चारों एस्पेक्ट, ये चारों डिपार्टमेंट में जब हार्मनी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जीवन रूपी यात्रा जो है वो बहुत बहुत सफल हो जाएगी. हम एक एक स्टेप को आगे लेते रहेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज लेट्स बिगिन आवर जर्नी. फिर से हम यात्रा पर चलते हैं, और आज हम यात्रा पर लेकर जाएंगे बहुत सारे रोड साइंस के साथ, जो रोड साइंस आप पहचानते हैं, जानते हैं, इस साइंस को लेकर जाएंगे. अच्छा बताइए, ये जो रोड साइन आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? हाँ जी, इट्स गेटिंग डाउन, स्टीप डाउन, राइट. हाँ, जब नीचे उतर रहा है, तो जब भी आप देखते हैं यूजली घाट्स में ये काफी होते हैं, जब बहुत डीप स्लोप इंक्लाइन होता है तो इस प्रकार का जो है ना एक सिग्नल होता है. इसका अर्थ क्या है? अ लाइफ जर्नी इज कंपैरेटिवली इजी एट स्टीप डिसेंट एंड रिलेटिवली टफ एट स्टीप एसेंट, है ना. अर्थात हमारी लाइफ पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी जाने में ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन यस, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी में जाना इसमें मेहनत की बात है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, है ना. और इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात बताता हूं. अमेरिका में ब्रिज है विच इज नोन एज अ ब्रुकलिन ब्रिज, और विश्व का फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज वहां बनाया गया, और उसके जो मेन विजनरी थे उनका नाम था जॉन रॉबलिंग. इन्होंने एक विजन बनाया कि यस, मुझे वो ब्रुकलिन रिवर, जिसको ईस्ट रिवर कहते हैं, कनेक्टिंग न्यूयॉर्क टू ब्रुकलिन, ये पहला फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज बनाना है. और क्रिटिक्स ने कहा इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो रिवर इतनी टर्बुलेंट थी. बोले यहां पे आप सस्पेंशन ब्रिज बनाओगे, इम्पॉसिबल. जॉन रॉबलिंग ने बहुत लोगों को कन्विंस किया इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. फाइनली उनके अपने बेटे जिनका नाम था वॉशिंगटन जूनियर, जो सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने कहा पापा आई विल वर्क विथ यू. एंड फादर एंड सन टीम जो थी, इन्होंने काम करना आरंभ किया. क्रिटिक्स ने कहा बेवकूफ लोग हैं ये. काम जब आरंभ हुआ, अचानक एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें जॉन रॉबलिंग की डेथ हो गई, साथ साथ में काफी वर्कर्स की भी डेथ हो गई. और ऐसे ही एक्सीडेंट में जो उनके बेटे थे जो सारा ये प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे थे पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गए और हॉस्पिटल में पड़े रहे। इतना पैरालाइज्ड हुए कि बस वो अपने हाथों को थोड़ा सा हिला सकते थे। क्रिटिक्स ने कहा, हमने पहले ही सावधानी दिए थे ना, आप तो सुनते नहीं थे, अभी देखो। वॉशिंगटन जूनियर जो उनके बेटे थे काफी दिनों तक ऐसे पड़े रहे। फाइनली उन्होंने ये देखा कि यस ही कैन कम्युनिकेट विद हिज पाम्स, वो हाथों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उन्होंने अपने वाइफ को बुलाया और उन्होंने अपने वाइफ के साथ एक कोड ऑफ कम्युनिकेशन सेट किए। जैसे जैसे वो हाथ का मूवमेंट करते थे उसके हिसाब से उनके युगल समझ सकते थे व्हाट इज ही ट्राइंग टू कम्युनिकेट। और उनकी वाइफ ने कम्युनिकेशन समझकर सारे फिर से सारे टीम ऑफ वर्कर्स और इंजीनियर्स को बुलाया। और ये विश्वास नहीं होगा कि जस्ट वॉशिंगटन जूनियर जस्ट बाय कम्युनिकेटिंग विद हिज पाम वॉज एबल टू ब्रिज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन दिस एंटायर वर्ल्ड। नाउ दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी से नेगेटिव तो कोई भी आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति के बाद भी ऊपर उठना, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लाइफ में यह सीखना है। फिजिकल एस्पेक्ट को लेते हैं, चार एस्पेक्ट है। फर्स्ट एस्पेक्ट इज फिजिकल। व्हाट डज दिस साइंस से, ये सिग्नल क्या बताता है? नो एंट्री, है ना। अगर ये नो एंट्री का साइन होगा तो प्लीज वहां पे गाड़ी नहीं लेके जाना है। वेरी सिंपल सिग्नल, नो एंट्री टू सिगरेट गुटखा एंड अल्कोहल। प्लीज अटेंशन, प्लीज नो एंट्री टू सिगरेट गुटखा एंड अल्कोहल। मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ना जब पढ़ाता हूं ना, बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, वेरी हाई पीसीएम मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में देखो इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 6-8 महीने के बाद मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं विद अ 6-inch सिगरेट इन देयर हैंड। जब एक व्यक्ति पहली बार सिगरेट लेता है ना हाथ में, तो दो प्रकार के विचार चलते हैं, पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार। भाई पॉजिटिव विचार कौन से चलते होंगे? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना, सिगरेट स्मोक करना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। नेगेटिव विचार कौन से चलते हैं? मैंने अपने एक स्टूडेंट को पूछा, भाई आप सिगरेट क्यों स्मोक करते हो? उन्होंने मुझे बहुत वंडरफुल जवाब दिया, और जवाब सुनते ही साथ तो मैं तो टोटली कंफ्यूज हो गया कि ये पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है। क्योंकि आप सभी इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल भाई बहने बैठे हैं, मैं सोचा आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप इसको ध्यान से सुनना उनका स्टेटमेंट, और आप मुझे बताना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैंने अपने स्टूडेंट को पूछा, व्हाई डू यू स्मोक? बहुत वंडरफुल जवाब दिया उन्होंने। कहा, सर स्मोकर्स ऑल्सो डाई, नॉन स्मोकर्स ऑल्सो डाई। सर जो स्मोक करता है वो भी मरता है, जो नहीं स्मोक करता वो भी मरता है। माई गॉड, वंडरफुल इंटेलिजेंट आंसर। अभी पॉजिटिव है नेगेटिव है मैं तो टोटली कंफ्यूज हो गया। लेकिन फिर मैं इंटरनेट में गया और मैंने ये पता लगाने की कोशिश की, और मैंने ये पता लगाया और इंटरनेट में ये डाटा अवेलेबल थी कि यस, स्मोकर्स जो होते हैं नॉन स्मोकर्स होते हैं दोनों की डेथ होती है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 18 इयर्स लाइफ स्पैन बिटवीन अ स्मोकर एंड अ नॉन स्मोकर, एंड दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति सिगरेट पीते पीते उसको कैंसर हो गया। ही फाइल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ में अगेन फाइल केस किया अगेंस्ट द सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और मालूम उसका ये दावा क्या था? आपके सिगरेट पीकर मुझे कैंसर हो गया और आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स मुझे दो फॉर माय ट्रीटमेंट। तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने कहा, पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? सिगरेट पैकेट में भले बहुत छोटे अक्षर में लिखते तो हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जब सबसे पहली बार मेरे दोस्त ने मुझे सिगरेट दिया उसमें कहां लिखा था सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ? एंड द सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लॉस्ट द केस। वन सिंगल पफ इज इनफ टू मेक अ पर्सन एडिक्टेड। एक सिंगल पफ हमारे हमको जीवन भर के लिए एडिक्ट कर देते हैं। उसके बाद सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत इंटेलिजेंट हो गए और हर एक सिगरेट में वो छापने लगे, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कुछ वर्षों के पहले एक और व्यक्ति पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और कहा, आपके सिगरेट पीकर मुझे कैंसर हो गया, नाउ पे मी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने कहा, देखो सिगरेट देखो इसमें छपा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उस व्यक्ति ने कहा, वो तो ठीक है वो तो लिखा है, लेकिन कहां लिखा है कॉसेस कैंसर? अगेन द सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लॉस्ट द केस। अब मालूम अमेरिका में क्या करने वाले? 6-inch सिगरेट में वो छापने लगेंगे, इट कॉसेस कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एवरी सिंगल सिगरेट यू बाय इन अमेरिका आपको एक फ्री बुकलेट मिलने वाला है अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। दिस इज व्हाट वी स्मोक, राइट? वी हैव टू एजुकेट आवर पीपल। हमें एजुकेट करना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे चेन स्मोकर, मैंने उनसे पूछा, हे माय डियर फ्रेंड व्हाई डू यू स्मोक? उसने कहा, प्रोफेसर व्हाई शुडंट आई स्मोक? तो जैसे ही उसने कहा तो मैंने अपना टेप चालू कर दिया. कंटेन्स 4000 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टेंट कॉलस, निकोटिन हाई है ना, इट कॉजेस हाइपरटेंशन, डायबिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आधे घंटे के मेरे लेक्चर के बाद उन्होंने कहा, प्रोफेसर बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात कहूं? मैंने कहा जरूर कहूं. उन्होंने कहा, आप में सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज है, आप में कोई प्रैक्टिकल नॉलेज तो है नहीं. मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं बताता हूं. उन्होंने सिगरेट लिया, स्मोक किया, कुछ परसेंटेज धुआं उन्होंने अपने बॉडी को इनहेल किया, कुछ परसेंटेज धुआं जो है बॉडी से एक्सहेल किया. फिर कहा, प्रोफेसर बताइए कितना परसेंट धुआं मेरे बॉडी ने अब्सॉर्ब किया, कितना परसेंट धुआं मेरे बॉडी ने एक्सहेल किया? मैंने कहा, यार ये तो नो आइडिया. बोला, मैं बताता हूं, 80% धुआं मेरे बॉडी ने अब्सॉर्ब किया, सिर्फ 20% धुआं मेरे बॉडी ने रिलीज किया. मैंने कहा, वेरी गुड. तो भाई साहब ने कहा, नहीं ये भी थियोरिटिकल, अभी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कहां? मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? तो कहा, अभी बताता हूं. उसने सिगरेट स्मोक किया और जब वो 20% धुआं एक्सहेल कर रहे थे तो उन्होंने अपना हैंडकरचीफ लिया एंड केप्ट इट वेरी क्लोज टू हिज माउथ और वो 20% धुआं उन्होंने उस हैंडकरचीफ में छोड़ा. और जब खत्म हुआ उनका एक्सरसाइज, वो हैंडकरचीफ मुझे दिखाया और कहा, प्रोफेसर बताइए. एंड आई कुड सी अ डार्क ब्लैक स्पॉट. प्रोफेसर व्हाट इज दिस? मैंने कहा, यार नो आइडिया. उस व्यक्ति ने कहा, दिस इज अ निकोटिन स्पॉट दैट यू आर स्पीकिंग इन योर थ्योरी लेक्चर. और वो एक एक लीफलेट को वो रिमूव करने लगे और हर लीफलेट में ये डार्क ब्लैक स्पॉट देखा. फिर उसने कहा, प्रोफेसर आप एरियल यूज कीजिए, टाइड यूज कीजिए, सर्फ यूज कीजिए, एक्सेल यूज कीजिए और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव द स्टेन. एंड दिस इज व्हाट वी स्मोक. आज समाज में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है गुटखा कंसम्पशन. खास करके मैंने काफी अपने ट्रांसपोर्ट के भाई बहनों को देखा है. माय डियर फ्रेंड्स, एक पैकेट गुटखा को लीजिए, उसमें एक पिन को इंसर्ट कर दीजिए, 24 घंटे के बाद आप उस पिन को इजिली ब्रेक कर सकते हैं. एक पैकेट गुटखा लीजिए, उसको एक ग्लास पानी में डाल दीजिए, एक ब्लेड को भी इसमें डाल दीजिए, 24 घंटे के बाद आप उस ब्लेड को उठाकर अपने हाथ से इस तरीके से निचोड़ सकते हैं. उसके लिए कोई केमिकल इंजीनियरिंग पास होने की जरूरत नहीं है. सिंपल बेसिक कॉमन सेंस. अगर ये बात मैं आप तक रखूंगा तो आप कहेंगे, भाई साहब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आकर देखो कितना स्ट्रेस है. अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ तो ऐसे पदार्थ यूज करने पड़ेंगे ना. काफी जगह मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर्स लेता हूं और मुझे बहुत अच्छे फीडबैक भी मिलते हैं. एक बार मैं ऐसी लेक्चर ले रहा था तो एक भाई साहब खड़े होकर कहते हैं, प्रोफेसर आप लोग इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट? मेरे पास एक सिंपल टेक्निक है, बताऊं क्या? मैंने कहा जरूर बताओ. मतलब वेरी सिंपल टेक्निक. सारा दिन में बहुत स्ट्रेस होता ना, इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म है. सर रात को 2 पैग ले लो सर, सारा स्ट्रेस खत्म. मैंने कहा अच्छा, ये 2 पैग लेने से होता क्या है? प्रोफेसर लेकर तो देखो. मैंने कहा नहीं बताइए. प्रोफेसर जैसे हम 2 पैग लेते हैं ना, हमें अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होता है. डॉक्टर दीपक चोपड़ा कहते हैं, पीपल आर लुकिंग एट द राइट थिंग्स एट द रॉन्ग प्लेसेस. हम सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं. वो भाई साहब भी सही है, उसको आनंद की जरूरत है, लेकिन वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं. ड्रिंक गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ अल्कोहल, माय डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कभी भी वो हमें आनंद नहीं मिलेगा. इसलिए आज के सुबह के सत्र में वो बताया गया था, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, इट्स अ इंटरनल क्वालिटी. इंटरनल में जाना है हमें, ऑटोमेटिकली हमको ये जो सारे गुण का एहसास होने लगेगा. सो प्लीज नो एंट्री टू सिगरेट गुटखा एंड अल्कोहल. इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? नो यू टर्न. अच्छा, इट सेज यू टर्न प्रोहिबिटेड. इसका अर्थ है मतलब यू टर्न, आपने कहा ना नो एंट्री, यू टर्न हम नहीं ले सकते. वंस एडिक्टेड, एक बार एडिक्ट हो गए ना, फिर यू टर्न हम नहीं ले सकते टू बैक टू गुड हेल्थ. अगर आपको स्टैटिस्टिक चाहिए तो मैं स्टैटिस्टिक्स बताता हूं. सिगरेट स्मोकिंग कहते हैं 87% ऑफ द लंग कैंसर इज बिकॉज ऑफ सिगरेट. अबाउट 4 मिलियन पीपल डाई वर्ल्ड वाइड एज अ रिजल्ट ऑफ टोबैको. रिस्क फैक्टर फॉर सम 25 डिजीजेस. ये सारा टोबैको आता है. इसलिए माई डियर फ्रेंड्स, सिंपल रिक्वेस्ट, यू टर्न प्रोहिबिटेड टू गुड हेल्थ. वॉट इज अ सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? टेल अस अ सोल्यूशन. वॉट डज दिस सिग्नल से? माई गॉड, आप सभी इंटेलिजेंट है, परफेक्टली राइट. नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ शॉप सेलिंग दिस मटेरियल्स. है ना, ये जो शॉप जो हमको बेचते हैं ना, उस शॉप से हम बचे और वहां प्लीज हम नो पार्किंग करें. कभी भी अपनी गाड़ी को पार्क नहीं करें. अगर हमने पार्क कर दिया तो फिर वो अथॉरिटीज हमको पिकअप करके लेकर जाएंगे और सीधे हॉस्पिटल में डाल देंगे, ऊपर से फाइन भी देनी पड़ेगी, है ना। डॉक्टर्स को हम क्या करते हैं, फाइन ही देते रहते ना। इसे प्लीज नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ शॉप सेलिंग दिस मेटीरियल्स। एक बार क्या हुआ, 6 दोस्त थे, उन्होंने अपनी मंजिल सेट की, वो दूर पर्वत है ना, उस पर्वत के मंजिल तक हमें पहुंचना है। सारे लोग ने लाइन ड्रॉ किया और सब लोग दौड़ने लगे उमंग उत्साह के साथ। दौड़ते दौड़ते अचानक क्या हुआ, एक बहुत बड़ा नदी आ गया। और जैसे ही नदी देखा तो एक ने कहा, माय गॉड इतनी बड़ी नदी, पता नहीं कितनी गहराई होगी, क्या होगा। एक ने बोला, दूसरे ने सुना, दो रुक गए। 4 लोग बच गए थे, 4 लोग किसी तरह तैरकर आगे बढ़े। दौड़ते गए, एक बहुत बड़ा जंगल आ गया बीच में। एक ने कहा, पता नहीं कितना बड़ा जंगल, शेर चीता भालू। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, दो रुक गए, बस अब 2 बाकी थे। 2 लोग किसी तरह जंगल पार करके दौड़ते गए एकदम पर्वत के नीचे पहुंचे। जब पर्वत के नीचे पहुंचे, एक ने कहा, माय गॉड ये पर्वत इतनी स्टीप है, कैसे चढ़ूंगा। लेकिन दूसरा चढ़ता गया अपनी मंजिल तक पहुंच गया। प्रश्न यह है, 6 में से सिर्फ 1 क्यों पहुंचा? अच्छा, 1 में बहुत दृढ़ निश्चय था और 6 लोग थे उसमें सिर्फ। हां जी, हां, द बेस्ट आंसर इज, उस 6 में से सिर्फ 1 पहुंचा क्योंकि वो पूरी तरह बहरा था, पूरी तरह बहरा था। इसे जब लोग हमको मोटिवेट करते ना ऐसे सब पदार्थों के लिए, प्लीज सुनना नहीं। हाँ, आप जो बोल रहे हैं अपने पास रखो। इसे एक बहुत अच्छा इंग्लिश में स्लोगन कहते हैं, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। कभी भी यस नहीं करिए जब आपको लग रहा है कि हमें नो कहना है। डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। सो नो पार्किंग, राइट। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, इसका अर्थ क्या है? ये कौन सा सिग्नल बताता है? बम्पर, स्पीड ब्रेकर, वेरी गुड वेरी गुड। इसका अर्थ है, फेस रफ रोड्स विथ कूल एंड काम माइंड। जब भी जीवन में से बहुत परिस्थिति आती है, जब बम्पर होता है, रफ रोड होता है ना, तो ऐसे समय पर अपने दिमाग को बहुत शांत रखें, कूल रखें, एंड ऑटोमेटिकली हम उसे पार हो सकते हैं। आर्मेनिया में 1982 में बहुत बड़ा भूकंप आ गया और उस भूकंप में बहुत सारे लोग मर गए, मोर देन 30,000 पीपल वेर डेड। तो जैसे ही पापा को पता चला भूकंप आया, पापा दौड़ा अपने बच्चे के स्कूल की तरफ, क्योंकि उसको मालूम था कि माय सन इज देयर इन द स्कूल। जब वो पहुंचा तो देखा सारा का सारा स्कूल ढेर हो गया है, तो वो उस तरफ भागा जहां पे उसका अपना बेटे का क्लास था, और वहां से उन्होंने देखा सारा का सारा ढेर हो गया, वहां से वो ईंटें उठाकर बाहर फेंकने लगा। तो बहुत सारे लोग आकर उनको सांत्वना देने लगे, नहीं नथिंग टू वरी, यू नो ये तो होता है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। उसने कहा, आप मेरी मदद कर रहे हैं क्या, तो करो, नहीं करे तो मैं मुझे करने दो। करते रहे करते रहे, 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, फिर लोग कहते थे नहीं अभी इतना घंटा नहीं, फिर पूछते थे बहुत शांत होकर, आप मुझे हेल्प कर रहे हो तो करो। करते रहे करते रहे, 25 आवर्स, 30 आवर्स, 35 आवर्स, 36th आवर में उनको एक आवाज सुनाई दी, पापा मैं इधर हूं, पापा मैं इधर हूं। दैट इज वॉट इज इन टाइम्स ऑफ रफ रोड्स वी हैव टू कीप आर माइंड वेरी कूल एंड काम, राइट। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा, मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगे, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगे, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, यही ठोकरे हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे, यही ठोकरे हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे। फेस द सिचुएशन विद अ कूल एंड अ काम माइंड। व्हाट डज इट से, स्पीड लिमिट। काफी बार जब हम यात्रा करते हैं तो एक स्पीड लिमिट रहता है, इट सेज प्लीज कीप योर स्पीड एट 20 किलोमीटर पर आवर एक्सेट्रा। उसी तरह जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम भी अपने विचारों की जो स्पीड है उसको भी लिमिट करें। क्यों लिमिट करना जरूरी है, आप सभी कंप्यूटर से वाकिफ है, राइट। अच्छा, आपको पता है कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें छोटा सा पंखा होता है, अवेयर, यू आर अवेयर ऑफ इट। जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक दिन आपने कंप्यूटर को ऑन किया, कुछ टेक्निकल कारण के कारण वो पंखा काम नहीं करता है, हाउ विल द कंप्यूटर रिएक्ट, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। वाओ, परफेक्टली राइट आंसर। क्या हो जाएगा, गर्म होने लगेगा और कुछ समय के बाद वो ब्लैकआउट हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। सोचने की बात यह है, कंप्यूटर जैसे इंस्ट्रूमेंट को भी कूलिंग इफेक्ट चाहिए, कूलिंग इफेक्ट चाहिए। उसी तरह हमारे मन को भी कूलिंग इफेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट रिक्वायर्स कूलिंग इफेक्ट। ये भी गर्म होने लगेगा ना तो ब्लैकआउट हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। इसलिए हमारे क्वांटिटी, स्पीड ऑफ थॉट्स को हमें चेक करना है, है ना। माताजी जो होते हैं ना, बहने जो होते हैं, वो जब सब्जी खरीदते हैं तो बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, R&D करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, बहन जी एक जगह जाएंगे, है ना, उनको टमाटर खरीदना होगा, तो वो जो बेचने वाला होता है ना, उससे पूछते हैं, अच्छा भाई साहब एक किलो टमाटर कैसे दिए, तो बहन जी बोलेंगे, अच्छा एक किलो टमाटर इज फॉर ₹10। बहन जी कहेंगे वेट वेट मैं आती हूं, और एकदम बाजू वाला जो टमाटर बेचता ना उनसे पूछते हैं, भाई साहब यहां टमाटर कैसे बेचे, तो वो देखता है कि आप वहां गए थे, वो बहुत जोर से चिल्लाता है, बहन जी है ना यहां पे 5 किलो ₹10 में, पहला जगह 1 किलो ₹10 में, दूसरी जगह 5 किलो ₹10 में। अब इसमें आप क्या समझते, क्वालिटी में कुछ अंतर तो होगा ना, कौन सी अच्छी क्वालिटी होगी, पहले वाली या दूसरी वाली, पहली वाली, वेरी सिंपल, मतलब सेम प्राइस में जब क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली गिरती है, सेम प्राइस में जब क्वांटिटी बढ़ती है तो हमारी क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम होती है। उसी तरह 5 मिनट में आप देखो कितने थॉट प्रोसेस आते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस आता है मतलब क्वालिटी इज कमिंग डाउन। इसे राजयोग मेडिटेशन बहुत सिंपल विधि है, जहां पर हम अपने जो विचारों की जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा सा कम करते हैं थ्रू स्पिरिचुअल विजडम। सो कहते हैं लिमिट द स्पीड ऑफ योर थॉट्स, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ना काफी बार स्लोगन देखते हैं आप, थ्रिल करता स्पीड लेकिन अल्टीमेटली इट समटाइम्स किल्स अस। अच्छा व्हाट डज दिस मीन, क्या दिखाता है ये सिग्नल, अच्छा इट स्पीक्स अबाउट अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, जहां पे कोई गार्ड नहीं है, मतलब यहां पे हमेशा डेंजर है, तो जब भी आप यहां गाड़ी में जा रहे हो और ऐसा सिग्नल देखोगे ना, मतलब गार्ड नहीं है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहां पे एक्सीडेंट के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमारी जीवन रूपी यात्रा में अवर नेगेटिव संस्कार्स आर द अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, हमारे जो नेगेटिव संस्कार्स हैं वो अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, उसमें कोई गाड़ी नहीं है, वेरी डेंजरस, बी केयरफुल, एक्सीडेंट होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। कौन कौन से नेगेटिव संस्कार है, इसका सिग्नल क्या है, आप देखो ना काफी ट्रक में ये साइन होता है, इट स्पीक्स अबाउट एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव, और हमारे जो एक नेगेटिव संस्कार जो बहुत बहुत एक्सप्लोजिव है वो कौन सा है, एक्सप्लोजिव ईगो, अहंकार। ईगो का अर्थ क्या है, ये विद्यालय का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है ईगो का, आप सुनेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे। ईगो का अर्थ है एजिंग गॉड आउट, एजिंग गॉड आउट, जब हमने जीवन से भगवान का स्थान को निकाल देते हैं मतलब हम देव भान में आ जाते हैं, वी बिकम वेरी वेरी ईगोइस्टिक। इसलिए कहा जाता है, ये विद्यालय में एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, जिस पेड़ में जितना ज्यादा फल होता है ना वो उतना झुकता है, जिस पेड़ में जितना ज्यादा फल उतना झुकता है, अर्थात जिस व्यक्ति में जितनी हमारी पोस्ट पोजिशन क्वालिफिकेशन उतना हमें नम्रचित होना चाहिए, निर्माणचित होना चाहिए, एंड देयरफॉर दैट्स एक्सप्लोसिव। इसका अर्थ क्या है, फ्लेमेबल, ऐसे बहुत सारे लॉरीज में ये सिग्नल होते हैं, बहुत बहुत फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी जल जाता है, कंबस्टिबल होता है। अच्छा फ्लेमेबल अर्थात हमारे लाइफ में कौन सा है फ्लेमेबल, गेस कर सकते हैं, ईर्ष्या, जेलसी, कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल, बर्न्स अस आउट कंप्लीटली। अगर हमारे किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होगी ना, हमें धीरे धीरे जलाकर नष्ट कर देगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ईर्ष्या ज्वाला लगे मन में, ईर्ष्या ज्वाला लगे मन में, न दवा लगे न बुझाए, बाहर धुआं ना निकले, बाहर धुआं ना निकले, अंदर ही मनुष्य झुलसता जाए, अंदर ही मनुष्य झुलसता जाए। इसे ईर्ष्या, बी वेरी वेरी केयरफुल। इसका अर्थ क्या है, डेंजर, एंड दैट इज एंकर, बहुत डेंजरस है, बहुत बहुत डेंजरस है। इसलिए कहते हैं जब एंगर आए ना तो उसके सामने डी लगा दो, वेरी डेंजरस, है ना, एंगर जब आए तो उसके सामने डी लगा दो, बहुत बहुत डेंजरस है। एक बार एक बहुत बड़े राजा थे, वो भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले, और जब भारत पर संपूर्ण विजय पा लिए, जब वो वापस जा रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु जो था बहुत शांति से तपस्या कर रहा था, और उनके चेहरे में वो दिव्यता थी, तो राजा उनको देखकर बहुत प्रभावित हो गए, और उनको लगा कि मैं इस साधु को ना अपने देश में लेकर जाऊंगा, और वो घोड़े से उतरे और उस संत को बुलाया, हे संत तेरे को मेरे साथ मेरे राज्य पर चलना है। तो संत ने धीरे से आंखें खोली और कहा, राजन मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, राजा ने कहा आपको पता है मैं कौन बोल रहा हूं, तेरे को मेरे साथ राज्य में चलना है। फिर से संत ने कहा, राजन मैंने कहा ना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो राजा ने कहा तेरे को पता है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं राजाओं का राजा हूं। बहुत गुस्से में आकर बोला। तो संत ने कहा आप अपने आप को राजाओं का राजा कहते हो, सच्ची बात बताएं आप कौन हैं। तो राजा ने पूछा भाई मैं कौन हूं। तो संत ने कहा सच्ची बात बताओ, आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, यू आर द स्लेव ऑफ माई स्लेव। अब राजा को आया गुस्सा, हे संत तू बता तूने ऐसा स्टेटमेंट बोला कैसे। तो संत ने कहा मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध मेरा गुलाम है और वो मेरा गुलाम जो क्रोध है वो आपको नचा रहा है, तो आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो गए ना, आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो गए। समटाइम्स वी बिकम स्लेव टू एंगर, है ना। राजा को ये मैसेज इतनी अच्छी लगी, जब राजा वापस आया तो सारे लोग ने पूछा राजन भारत का अनुभव कैसा था। तो राजन ने कहा मैं बहुत एक अच्छा अनुभव लेकर आया हूं, आप सभी दरबार में चलो। जब दरबार में है ना, तो राजा ने दो हीरे को निकाला और सब दरबारियों से पूछा अच्छा बता सकते इसमें असली हीरा कौन सा है, असली हीरा कौन सा है। तो सब लोग ने आके इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, लेकिन असली हीरा किसी को आइडेंटिफाई करते नहीं बना। एक अंधा व्यक्ति ने कहा राजा मैं असली हीरा आइडेंटिफाई कर सकता हूं। वो तो अंधा होकर कैसे आइडेंटिफाई करेगा। बोला राजन जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। वो अंधा व्यक्ति गया बाहर, पीछे पीछे मंत्रियों को भी भेजा देख ये क्या करता है। 5 मिनट के बाद आया और उसने कहा राजन ये असली हीरा है। राजन ने देखा तो यस तो असली हीरा है। तो राजन ने पूछा आपने कैसे पता लगाया प्लीज बताइए। बोला बहुत सिंपल है राजन, दोनों हीरे को मैं बाहर लेकर गया, सूर्य के प्रकाश में रखा। जो असली हीरा होता है कभी गर्म नहीं होता है, कांच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, कांच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आत्मा एक बहुत सुंदर हीरा है और आत्मा इज ए ज्वेल, डायमंड है। जब भी हम गर्म हो ना तो हमें ध्यान रखना कि फिर से हम कांच से हीरा बने। कैसे हमें करना है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। जैसे देखो बाहर बहुत बारिश हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम छतरी को लगाते ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर का जो वातावरण है मुझे इफेक्ट करे। अंदर गर्मी पड़ रही है तो एसी थोड़ा बढ़ाने के लिए कहेंगे प्लीज भाई एसी को थोड़ा बढ़ाओ, राइट। हम नहीं चाहते कि भाई ये गर्मी मुझे इफेक्ट करे। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति गर्म हो रहा है ना तो क्या करना, अपना इंटरनल एयर कंडीशन ऑन कर देना और जब वो गुस्सा करते रहे ना तो मुस्कुराते रहना, नो प्रॉब्लम। बिकॉज दैट इज हाउ यू कैन रिमेन योर सेल्फ वेरी वेरी सेफ। इट्स वेरी वेरी डेंजरस माई डियर फ्रेंड्स। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पर आते हैं, वॉट इज द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, दिस इसका अर्थ क्या है। हम इंटेलेक्चुअल है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, प्लीज काफी जगह ये रहता है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। इसलिए कहते हैं ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड ऑफ दीज नेगेटिव संस्कार, इट वुड मेक आर एक्शंस नेगेटिव। अगर ये क्रोध लोभ मोह मेरे को ओवरटेक कर देंगे तो मेरी एक्सीडेंट हो जाएगी। एक बार एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर नए ऑफिस में उनका ट्रांसफर हुआ। जैसे ही वो आए अपना ऑफिस कैबिन में बैठे तो सारा सिस्टम को देख रहे थे बिकॉज इट वॉज अ न्यू ऑफिस फॉर हिम। तो उनको बहुत प्यास लगने लगी तो उन्होंने देखा एक बेल था तो बेल को दबाए तो प्यून आया। तो मैनेजर ने बहुत प्रेम होकर प्रेम से कहा क्या आप मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आ सकते हैं। तो प्यून ने बहुत कड़क आवाज में कहा मेरा काम पानी वानी लेकर आने का नहीं है। तो मैनेजर ने पूछा फिर आपका काम क्या है। बोला मेरा काम है आप तक फाइल्स लेकर आना, आपसे फाइल्स लेकर जाना, इसके अंतर्गत कुछ है तो बोलो। तो मैनेजर ने शांति से सोचा अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना फाइल्स लेकर जाना। बोला अच्छा टुडे इज माई फर्स्ट डे इन ऑफिस, मैं सारे फाइल्स को स्टडी करना चाहता हूं, ये इस ऑफिस की सबसे ओल्डेस्ट फाइल कौन सी है। तो प्यून ने सोचकर कहा 1960। बोला वेरी गुड, क्या आप 1960 का फाइल लेकर आ सकते हैं सो दैट आई कैन स्टडी। अब प्यून के पास और कोई तरीका ही नहीं था, वो स्टोर रूम में जाते हैं एक डेढ़ घंटे तक बहुत मेहनत करते हैं 1960 का फाइल लेकर आते हैं। मैनेजर उनको मोटिवेट करते वेरी गुड डीप इट अप। दूसरा दिन सुबह आते हैं मैनेजर उनको बेल दबाता है तो प्यून आता है बहुत मुस्कुराते हुए कहते आज 1961 का फाइल लेकर आएंगे। ओ माय गॉड, फिर से जाते डेढ़ दो घंटा फिर फाइल लेकर आते हैं, फिर मैनेजर उसको मोटिवेट करता है। तीसरा दिन जब बेल बजाते तो फिर मैनेजर कहता 1962 प्लीज, फिर मोटिवेट करता है। चौथा दिन जैसे ही मैनेजर आता ना तो प्यून एक ग्लास पानी लेकर आता है, सर पानी पीजिए सर, है ना। अब जस्ट इमेजिन कीजिए वो मैनेजर की जगह पर और कोई होते तो क्या कहते थे, तेरे को पता है मैं कौन हूं, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं। तो वो प्यून भी अपना घर का मैनेजर है, वो बोलेगा ये बात यहां नहीं करो, यूनियन ऑफिस में बात आकर करो, है ना। तो यूनियन ऑफिस में आता है झगड़ा बढ़ता है, द फर्स्ट थिंग द मैनेजर इज डूइंग इज इश्यूइंग ए मेमो नोट। लेकिन इफ यू आर इंटेलिजेंट मैनेजर्स, हमें क्या करना है, काम को भी निकालना है और उनको अपना है ना, सहयोगी भी बना है, तो प्लीज ओवरटेकिंग इज वेरी वेरी मच प्रोहिबिटेड. सोशल एस्पेक्ट, अब हम सामाजिक इस पर आ रहे हैं. इसका अर्थ क्या है या इसका अर्थ क्या है? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है ना. कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं. आप बता सकते हैं दो प्रकार के लोग कौन होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. कौन से ये दो प्रकार के लोग? हां जी, हां, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक राइट, और सकारात्मक नकारात्मक, और अच्छा लॉ अबाइडिंग लॉ ब्रेकिंग, और क्रिटिसाइजिंग एंड सिस्टर अप्रिशिएटिंग एंड क्रिटिसिज्म, परफेक्टली राइट या, और हां जी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हां जी, और नहीं देयर डिफरेंट. लेकिन बेस्ट आंसर मालूम है, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते. पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जब वो आते हैं हमें बहुत खुशी देते हैं. दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं, वो दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं. पहले प्रकार के लोग वो हैं, है ना, जब वो आते हैं तो हमें बहुत खुशी देते हैं. दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते हैं जब वो जाते हैं. टू कैटेगरीज ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. तो कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं जब वो आते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है. कुछ लोग हमें खुशी देते हैं जब वो जाते हैं, राइट. तो देखो क्यों होता है ऐसे, क्योंकि हमारे हां जी, कुछ लोग जब आते हैं तो हमें खुशी देते हैं, कुछ लोग जब जाते हैं हमें खुशी देते हैं. दे आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल. क्यों? पहले प्रकार के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट बहुत अच्छा रहता है. दूसरे प्रकार के लोग के साथ हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट इतना अच्छा नहीं रहता है. इसलिए हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके वो हमारा स्थान छोड़कर जाए. तो ये जो लोग हमें बहुत अच्छे होते हैं ना, दिस इज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग. तो जो लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राइट. सो इट इज लाइक दिस, पीपल हुम वी लाइक, वी गिव ग्रीन सिग्नल फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, है ना. और इसका अर्थ क्या है? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग प्रोहिबिटेड. इसका अर्थ है जो लोग हमें अच्छे, पीपल हुम वी डिसलाइक वी गिव रेड सिग्नल इंडिकेटिंग पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड. जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते उनका हम पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड का सिग्नल दे देते हैं, राइट. तीसरा, इसका अर्थ क्या है? स्कूल, जब बच्चे जाते हैं ना तो उसके सामने सिग्नल होता है. जब भी आपकी गाड़ी जा रही ना, तो बीच में जब स्कूल के बच्चे छोड़ते हैं ना, तो एक मिनट गाड़ी को साइड पार करके बच्चों को ऑब्जर्व करो. इतने इनोसेंट, इतने प्योर. इसे जब दुखी होता है ना, तो कहते हैं छोटे से बच्चे को देखो, तो बच्चे का जो चेहरा, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, इतना पॉजिटिविटी होता है, क्योंकि वो शुद्ध है, वो पवित्र है. उनमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन. नो डिस्क्रिमिनेशन, दे एक्सेप्ट एवरीथिंग एट फेस वैल्यू. जो है सो है. इसलिए जब हम बच्चों को देखें, उनको ऑब्जर्व करें, विल बी रियली मोटिवेटेड. ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल एंड एनहेंस योर प्योर पॉजिटिव थॉट्स. इसका अर्थ क्या है? हॉर्न प्रोहिबिटेड. प्लीज हॉर्न प्रोहिबिटेड. इसका अर्थ क्या है? हॉर्न प्रोहिबिटेड बिकॉज पीपल लाइक हम्बल डाउन टू अर्थ नेचर. काफी लोगों की ये होती है, अपनी बड़ाई करते रहेंगे, दूसरों का सुनेंगे ही नहीं. तो ऐसे लोगों के पास लोगों को जाना अच्छा नहीं लगता. बस अपनी, मैंने ये किया. नहीं, तो हॉर्न प्रोहिबिटेड. क्यों? लोग इनको पसंद करते जो बहुत हम्बल है, सादगी है, सिंप्लिसिटी है. आज आपके पास दादी जानकी जी यहां पर आए थे. आप कितने ना सौभाग्यशाली हैं जो दादी जी से मिले. दादी जी कितने सिंपल, तीन बातें, चार बातें, दो बातें बताते रहे. लेकिन आपको पता है दादी जी की असली क्वालिफिकेशन क्या है? दादी जानकी जी इज डब्ड एज द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द यूनिवर्स, आई रिपीट, बाय लैंजले पोर्टर साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट. दादी जी पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया. आपको अगर ये देखना है तो हमारे वीडियो कैसेट में एक बहुत सुंदर कैसेट है, द साइकिक एंड द योगी, ये कैसेट देखो आप. उससे पता चलेगा कि दादी जी पर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए. दादी जी को कहा कि आप लेट जाइए, और जब दादी जी लेट गए तो ईईजी, इलेक्ट्रो एनसाइक्लोग्राफी से दादी जी के थॉट प्रोसेस मेजर किए गए. एंड दादी जी वॉज इन द डेल्टा स्टेट ऑफ कंडीशन, जिसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते द स्टेट ऑफ कॉमा. लेकिन दादी जी वॉज 1.2 साइकिल्स पर सेकेंड, इतना कम स्पीड ऑफ थॉट्स. दादी जी सो रहे थे, अचानक दादी जी को बुला लिया गया विद ऑल दैट इलेक्ट्रोड्स. फिर भी दादी जी वॉज इन द डेल्टा स्टेट ऑफ कंडीशन. जस्ट इमेजिन कीजिए, आप गहरी नींद पर हैं और अचानक कोई आपको बुला लेता है तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के संस्कार उभर जाएंगे. बट दादी जी वॉज इन दैट स्टेबल कंडीशन. फिर दादी जी को ना कहा 1 to 100 काउंट करो, 100 to 1 काउंट करो, कुछ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिए गए. फिर भी दादी जी वॉज इन द सेम स्टेट ऑफ कंडीशन. अचानक दादी जी को एक टॉपिक दे दिया गया, फिर भी दादी जी वॉज इन द स्टेट ऑफ कंडीशन. मैं अचानक किसी भाई को यहां बुला लूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गिव वोट ऑफ थैंक्स फॉर स्वामी भाई. नहीं, डरना नहीं, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, लेकिन यहां आते साथ कैसी हालत हो जाएगी. बट दादी जी को अचानक टॉपिक दिया गया, शी इज इन द डेल्टा स्टेज ऑफ कंडीशन. फिर दादी जी से कहा अचानक सो जाइए. दादी जी जब सो गए तो उनके पैर में खीले भोंके गए. स्टिल इट वॉज इन द डेल्टा स्टेट ऑफ कंडीशन. फिर लैंजले पोर्टर साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट ने दादी जी को ये टाइटल दिया, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द यूनिवर्स, द फर्स्ट डेल्टा वुमन ऑफ द वर्ल्ड, अ वुमन ऑफ परफेक्ट रिदम. और ऐसे दादी जी से आज आपकी मुलाकात हुई. दादी जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे फॉरेन में, तो दादी जी से पूछा गया, दादी जी हाउ कुड यू बी द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द यूनिवर्स, कैसे आप इतनी स्टेबिलिटी, इतनी स्पीड लिमिट इतना कम कैसे कर पाते. और दादी जी का बहुत वंडरफुल जवाब था, मालूम क्या जवाब था, आई एम इन हार्मनी विथ एवरीबडी, सबके साथ मैं हार्मनी से चलती हूं. तो रिपोर्टर्स ने पूछा, दादी जी प्लीज बताइए हार्मनी मतलब क्या है. और दादी जी ने जवाब दिया, हार्मनी अर्थात हार मान ली. हार मान ली. नहीं, काफी लोग होते हैं, नहीं मैं ठीक हूं, मैं ही अच्छा हूं, आप लोग नहीं. दादी जी का ये वंडरफुल जवाब, आप जो हैं जैसे बहुत अच्छे हैं, और इसलिए शी वॉज एबल टू गेट द टाइटल. तो हॉर्न प्रोहिबिटेड, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, गार्डेड लेवल क्रॉसिंग. एक था अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, इसमें गार्ड है. और हमारे जीवन में जो गार्डेड लेवल क्रॉसिंग मालूम क्या होती है, वो है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारे सबके साथ संबंध कैसे हो इन टाइम्स ऑफ ट्रबल. बस यही हमारे क्लोज रिलेशन जिसके साथ होगा ना, वो हमको गार्ड करेंगे. इसे सर्व के साथ वंडरफुल संबंध, बहुत पॉजिटिव प्योर संबंध होना चाहिए. और जब संबंध की बात कहते हैं ना, हमारा संबंध सबके साथ अनकंडीशनल होना चाहिए, निस्वार्थ स्नेह. आप कहेंगे प्रोफेसर आजकल के जमाने में निस्वार्थ स्नेह होता किधर है, होता है, और वो है एक मां का अपने बच्चों के प्रति, दैट इज अ प्योर अनकंडीशनल लव. आपने वो बात सुनी होगी, बहुत अच्छी बात है. एक बार मां जो थी ना किचन में भोजन बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मां के पास आता और कहता, मम्मी इस महीने का बिल आपको मैं सबमिट करूंगा. मम्मी कहती व्हाट, बोला यस. तो मम्मी वो बेटे का बिल देखती है, मालूम उसमें क्या लिखा रहता, बेटा मम्मी इस महीने 3 बार आपने नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर ट्रिप 6 रुपीज. मम्मी आपने बकेट के पानी को यहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा 10 रुपीज. मम्मी आपने छोटे भाई को संभालने के लिए कहा वेरी टेरिफिक जॉब 15 रुपीज. सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि आप मेरे डियर लविंग मम्मी हो तो 6 रुपए डिस्काउंट, 7 रुपए का बिल. तो मां ये बिल को देखती है, उस बेटे को देखती है, अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था मां लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज. मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज. जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज. जब भी आप स्कूल से कॉलेज से ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे तो गर्मा गर्म भोजन मैं आपको बनाकर देती थी, नो चार्ज. और मम्मी नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है. बेटा उस बिल को देखता है, अपनी मां को देखता है और कहता है मम्मी आई एम वेरी सॉरी, और अपने बिल को लेता है, बहुत खुशी से कट करता है और लिखता है मम्मी पेड इन फुल, पेड इन फुल बट इंडेब्टेड फॉर एवर. जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा. किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं. वेरी सिंपल, कीप योर मामा हैप्पी, द होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विथ यू. हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस. लास्ट एक एस्पेक्ट पे आ रहा हूं, दैट इज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. व्हाट डज दिस शो, रेड येलो एंड ग्रीन. जब रेड देखे तो रुक जाइए, येलो मीन स्लोली स्टार्ट पिकिंग अप योर व्हीकल, और ग्रीन हो तो सिग्नल. मेडिटेशन इज दिस, यहां पे आपको मेडिटेशन समझ में आएगा सिग्नल के द्वारा, है ना. ओके फाइन. रेड अर्थात रिलैक्स, सबसे पहले जब इसलिए देखो जैसे हमारे यहां मेडिटेशन स्टार्ट होता ना तो रेड लाइट कर देते, रिलैक्स रिलैक्स, फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, मैं कौन हूं. राजयोग का ये स्टेप है, अपने आप से पूछो हु एम आई, मेरे अपनी क्वालिटीज कौन सी है. और तीसरा है ग्रीन अर्थात गॉड रियलाइजेशन. थर्ड स्टेप इज भगवान के साथ वो कम्युनिकेट करो, एंड दिस इज राजयोग मेडिटेशन. और मैं सच्ची बात बताता हूं, इसकी जो सिस्टम है मन बुद्धि और संस्कार से होता है, जो आज आपने सुबह का लेक्चर में सुना. कल सक्सेना भाई साहब बात कर रहे थे अलाइनमेंट की, कौन सी अलाइनमेंट हमें राजयोग में हेल्प करेगा? मन, बुद्धि और संस्कार। और जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनकी अलाइनमेंट बहुत सिंपल हो जाती है, और खास करके जो बॉम्बे से आए हैं। अच्छा, बॉम्बे से कितने भाई बहने आए हैं, हाथ उठाइए। गुड, बहुत सहज है। और दूसरे लोग भी कभी कभी मेडिटेशन का टेक्निक सीखना है ना, तो बॉम्बे में जाना, और बॉम्बे में खास सबर्बन ट्रेन, वाह क्या अनुभव होता है। हमारे एक भाई साहब ना आए, बॉम्बे में आए जॉब के लिए, और एक दो दिन ट्रेन की धक्का खाकर कहे, स्वामी भाई मैं वापस जा रहा हूं। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या? क्या धक्का है बापरे, चढ़ने में भी प्रॉब्लम, उतरने में भी प्रॉब्लम। पहले तो चढ़ाई में प्रॉब्लम थी, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सीखे कैसे चढ़े। तो मैंने कहा चढ़ना कैसे? बोला वो ठीक है, उतरने में स्वामी भाई बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा ट्राई करो, आप सीख जाओगे, टेक्नोलॉजी सीख जाओगे। दो हफ्ते के बाद मिला तो भाई साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्वामी भाई अभी उतरना इतना सहज हो गया। मैंने कहा क्या बात करते हो, ऐसे कैसे आपने सीख लिया, उतरना कैसे सहज हो गया? बोला आपको अगर टेक्नोलॉजी नहीं मालूम ना तो मेरे से सीखो। मैंने कहा जरूर शेयर करो। बोला बहुत सिंपल है, अगर सपोज मुझे दादर उतरना है ना, तो सामने वाले से पूछो कहां उतरोगे, वो कहेगा दादर, वेरी गुड। पीछे वाले से पूछो कहां उतरोगे, दादर। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे वाले और पीछे वाले सारा काम कर देंगे। और अब फरिश्तों की तरह बाहर चले जाओगे। राजयोग मेडिटेशन में भी तो यही है। अच्छा, मैंने पूछा, अच्छा बाई चांस आप इमेजिन कीजिए, सामने वाले तो दादर उतरने वाले होते ही हैं, अगर इमेजिन कीजिए पीछे वाला दादर नहीं उतरेगा तो आप क्या करते हो? मतलब कितने सिंपल है, मैं उस व्यक्ति पीछे सबसे पूछता कौन दादर कौन दादर, जो दादर है ना उसके सामने अलाइन कर देता हूं। बहुत सिंपल। राज्यों में यही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि, सामने है मन, पीछे है संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार के बीच में वो अलाइनमेंट होना चाहिए। बुद्धि जो है ना समझता है, जजमेंट है। बुद्धि धीरे से पूछे मन से, मन तेरे को जाना किधर है? मन कहेगा भगवान के पास। पीछे पूछे संस्कार से, संस्कार तेरे को जाना किधर है? अगर वो कहता भगवान, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओगे। हाँ, अगर हम कहते हैं कि हमारा वो योग अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके दादियां दो दिन से बहुत बात पर फोकस कर रहे हैं, पीछे वाले संस्कार को थोड़ा अलाइनमेंट करो, और जैसे अलाइनमेंट हो जाएगा ना तो हमारा भगवान के साथ वो कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। यस, जब हम भगवान की बात कहते हैं तो भगवान को सही अर्थ में समझना भी बहुत जरूरी है, किनके साथ हम कम्युनिकेट करें। और सच्ची बात बताऊं, आज के समाज में शायद हमने भगवान को समझा ही नहीं। दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, एक तरफ हम भगवान को कहते हैं वो प्रेम का सागर है, और दूसरी तरफ उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। वी हैव बिकम गॉड फियरिंग रादर देन गॉड लविंग, है ना। अगर आप कहेंगे नहीं 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 मैं तो भगवान से नहीं डरता हूं, फिर दूसरा कारण है जिसके कारण हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं समझा, और वो है विडंबना की बात है कि मोर देन 80% जो आज संसार में युद्ध चल रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस प्रेम के सागर के नाम पर युद्ध चल रहा है। चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वार हो, अमेरिका इराक वार हो, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम हो, है ना, फिर आसाम का प्रॉब्लम हो, घाटकों पर ब्लास्ट हो, मुलुंद ब्लास्ट हो, सारा भगवान के नाम पर। क्या हमने सही अर्थ में भगवान को समझा है? इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। हम भगवान के नाम पर युद्ध कर रहे हैं। चलो भगवान के नाम को सही अर्थ में समझते हैं। अरे हिंदूस मनाते हैं दिवाली, और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान। हिंदूस मनाते हैं दिवाली, हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान। थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली तो रमजान में है राम, दिवाली में है अली रमजान में है राम। अरे दिवाली में है दिल DIL तो रमजान में है जान ZAN। अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना। वो भगवान का परिचय हमको होना बहुत बहुत जरूरी है। What does this signal show? Very good, round about turn, yeah, round about turn. It says our karma would take 360 roundabout turn and would come back to us again. जो बीज बोते हैं फल जरूर जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक भाई ने मुझे ऑस्ट्रेलिया की एक सच्ची कहानी बताई, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट था जहां पे वो ओनर को ना कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की अपनी एक बहुत सुंदर विधि थी। वो क्या करते थे, उनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट के बीच में बहुत ब्यूटीफुल पूल था, स्विमिंग पूल की तरह, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मछलियां थी। तो जो भी कस्टमर आता था ना उनके, वो सबके सामने वो बताता था आई वॉन्ट दैट फिश, और उनके सामने वो मछली को लेते थे, और मछली ऐसा तड़पता था और उनके सामने वो तेल था, मसाला था उनके सामने. इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ सैडिस्टिक प्लेजर. उनके सामने वो बनाते थे और सर्व करते थे. कुछ दिनों के बाद उस रेस्टोरेंट के आजू बाजू एक बहुत बड़ा है ना फायर केस हो गया, आग लग गई. और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता, फर्स्ट एड मैकेनिज्म के लिए वो हेलीकॉप्टर को भेजते हैं और वो अपना जो ना सारा पानी उसमें डालता है. इट्स अ फर्स्ट एड मैकेनिज्म. और जैसे इनको पता चला वहां आग लगी तो हेलीकॉप्टर वॉज प्लेस्ड इनटू सर्विस. और हेलीकॉप्टर जाकर जब पानी डालकर जब वो बेस स्टेशन में आ रहा था पानी को इकट्ठा करने के लिए, तो पायलट ने देखा कि भाई बहुत सारा पानी एक स्विमिंग पूल की तरह है. तो उसने सोचा कि मैं इतना दूर बेस स्टेशन में क्यों जाऊं, यहां तो इमरजेंसी है. उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना जो हेलीकॉप्टर था नीचे उतारने लगा और बहुत बड़े सक्शन पाइप को वो नीचे डाला ताकि पानी को अब्सॉर्ब कर सके. और जैसे ही ये करने लगा तो ओनर ने देखा, माय गॉड मेरे मछलियों का क्या होगा. वो दौड़कर पायलट को बोलने लगे, प्लीज डोंट डू दिस. लेकिन आवाज से वो कुछ सुनाई नहीं दिया, तो वो क्या किए, सक्शन पाइप को हटाने की कोशिश किए और इतना उसका सक्शन प्रेशर था कि उस प्रेशर में वो व्यक्ति भी अंदर आ गए और वैसे का वैसे ही जाकर जहां पे आग था वहां डाल दिए. कर्मा, इट विल हैव टू टेक अ टर्न. हर बीज जब हम बोते हैं उसका फल हमको जरूर जरूर मिलेगा. इसलिए बी वेरी केयरफुल. दादी जी की कल एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज अवॉइड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड. और आज मैं आपके सामने बैठा हूं, वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ पक्का नॉन वेजिटेरियन. लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आई मैंने कहा नो, आई नीड टू अवॉइड इट. एंड कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बिल्कुल ठीक नहीं है. इट्स अ सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट. इसका अर्थ क्या है, है ना, ये साइन देखते हैं तो क्या अर्थ होता है. इट स्पीक्स अबाउट फेरी क्रॉसिंग. अर्थात मेक गॉड योर कंपेनियन एंड ही वुड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेरी क्रॉसिंग. हमारी जीवन रूपी यात्रा को जब जाना ना तो भगवान का अपना कंपेनियन बनाओ. मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, हमारे नेरुल में एक भाई हैं दुर्गा भाई जी, है ना, उनके पास मारुति कार है, हमेशा सेवा के लिए तैयार होती है. तो जब भी हम उनके गाड़ी में बैठेंगे ना, तो पहली बार जब मैं उनकी गाड़ी में बैठा तो उन्होंने कहा स्वामी भाई चले. तो मैंने कहा चलो. हम सेवा में जा रहे थे तो मैं आगे बैठा था, पीछे तीन बहनें बैठे थे, तो दुर्गा भाई माइसेल्फ और पीछे तीन बहने. तो बोला चले. मैंने कहा चलो. तो उन्होंने धीरे से मुझसे पूछा स्वामी भाई कितने लोग हैं. मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे. मैंने कहा एक दो, दो और तीन पांच. मैंने कहा पांच लोग हैं. बोला फिर से गिनो. मैंने कहा एक दो पांच हैं. बोला स्वामी भाई फिर से गिनो. और मुझे समझ में नहीं आई. फिर धीरे से उन्होंने कहा स्वामी भाई आप भगवान को साथ में ही लेकर जा रहे हैं. फिर से उन्होंने पूछा कितने लोग हैं. तो मैं मुस्कुराते हुए कहा दुर्गा भाई छह लोग हैं. बोला अभी गाड़ी चलाते हैं, है ना, जब भी गाड़ी को चलाए ना एक सेकेंड हम उस परमात्मा को याद करें और फील करें कि यस वो मेरे साथ इस जीवन रूपी नैया को पार कराने के लिए आ रहे हैं, है ना. इसका मतलब क्या है, देयर इज ओनली वन वे. वन वे अर्थात प्लीज रिमेंबर there is only one way to lead our journey with harmony and that is har pal har shan bhagwan ko hum thank you bhagwan thank you bhagwan thank you bhagwan kahe. keep on thanking god aur us parmatma par sampurn nishchay aur faith baithe hai na sampurn nishchay aur faith baithe. america mein aapne suna hoga arthur ashe jo wimbledon tennis champion the. और ऑफ लेट उनको एक बहुत डेडली डिजीज हो गया था. और जब उनको इतना फेटल डिजीज जिससे कोई रोग का कोई उपचार ही नहीं है, तो बहुत सारे लोग ने आर्थर आशे को लेटर लिखा. और एक व्यक्ति ने आर्थर से पूछा, आर्थर व्हाई डिड गॉड सेलेक्ट यू फॉर सच ए डेडली फेटल डिजीज. भगवान ने ऐसे रोग के लिए आपको क्यों सेलेक्ट किया. और आर्थर आशे का बहुत वंडरफुल रिप्लाई था, 5 crore चिल्ड्रन स्टार्ट प्लेइंग टेनिस. 5 crore लोग जो है ना टेनिस खेलते हैं, उसमें से 50 lakhs टेनिस कैसे खेलना होता वो सीखते हैं. उसमें से 5 lakh लर्न प्रोफेशनल टेनिस सीखते हैं. उसमें से 50,000 रीज द सर्किट, 50,000 सर्किट पहुंचते हैं. उसमें से 5,000 रीज द ग्रैंड स्लैम में सिर्फ 5,000 पहुंचते हैं. और फिर उसमें से 8 रीज द क्वार्टर फाइनल, सिर्फ 8 पहुंच सकते हैं क्वार्टर फाइनल में. उसमें से सिर्फ 4 रीज द सेमीफाइनल और उसमें से सिर्फ 2 फाइनल में पहुंच सकते हैं. और 5 crore जो लोग एक समय में एक टेनिस खेलना आरंभ किए उसमें से ओनली वन बिकम्स द चैंपियन ऑफ चैंपियंस. आर्थर आशे ने कंटिन्यू किया, व्हेन आई वाज होल्डिंग द कप आई नेवर आस्क्ड गॉड व्हाई मी. जब मैं वो कप को होल्ड कर रहा था तब मैंने भगवान से नहीं पूछा मुझे क्यों सेलेक्ट किया. टुडे इन पेन्स आई शुड नॉट बी आस्किंग गॉड वाई मी. आज जब मैं पेन में हूं तो भगवान से मुझे ये नहीं पूछना चाहिए कि मुझे क्यों सेलेक्ट किया. उसे कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में सिमरन करे तो स्ट्रेस और प्रॉब्लम काहे को होए, तो स्ट्रेस प्रॉब्लम दुख काहे को होए। हर पल हर क्षण हमें भगवान को थैंक यू करना है। कम द जर्नी, लेट्स हैव अ न्यू बिगनिंग। स्टार्टिंग में हम क्या थे, टोटली कंफ्यूज थे कहां जाना है। 1996 में मैं भी इसी तरह भटक रहा था। जब 1996 अक्टूबर में मैं एक कॉन्फ्रेंस में यहां पर आया तो मुझे एक नई दिशा मिली जो मैं आपको आज आपको बताता हूं। ये दिशा है, आज हम कहां पे खड़े हैं, अभी आप सभी संगम युग में पहुंच गए जहां पे आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। अब यू आर इन द क्रॉस रोड, जंक्शन में है। जब आप वापस जाएंगे आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक आपको लेकर जाएगा कलयुग की तरफ और दूसरा लेकर जाएगा सत्ययुग की तरफ। चॉइस इज योर्स। लेकिन हमारा अनुभव कहता है, ये शुभ भावना है कि आप सभी भाई बहने हम सबके साथ कहां चलेंगे, सत्ययुग में, या संपूर्ण सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता होगी। एंड में मैं यही विचार रखूंगा, फूल की हर कली खुशबू दे आपको, फूल की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज का हर किरण रोशनी दे आपको, सूरज का हर किरण रोशनी दे आपको। ये विद्यालय तो सिर्फ राह दिखाने वाला है, ये विद्यालय तो सिर्फ राह दिखाने वाला है, देने वाला हर खुशी दे आपको, देने वाला हर खुशी दे आपको। Let's join together in harmony towards a beautiful and a wonderful journey. एक बहुत सुंदर सब भावना के साथ हम मिलते हैं, एक बहुत सुंदर जर्नी की तरफ चलते हैं। थैंक यू एंड ओम शांति। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत सुंदर क्लिपिंग दिखाऊंगा, वो देखने के बाद आई विल हैंड इट ओवर बैक टू कोकिला बहन जी। ये गीत बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप ये देखना है, समय की ये पुकार है कि ऐसा समय आने वाला है जब चारों तरफ बहुत प्रॉब्लम्स होगी। ऐसे समय की पुकार है कि हम भगवान को जितना हो सके याद करें, राजयोग मेडिटेशन करें, और ये हम देखेंगे। और आप सभी मेरे साथ इस बात को एंजॉय करना। थैंक यू, ओम शांति।
स्वामी भाई ने इस हारमोनी हॉल में हमें जर्नी विथ हारमोनी जो सिखाया, शायद कोई भी इस बात को भूल नहीं सकेगा। न इस हारमोनी हॉल को भूलेंगे, न स्वामी भाई को भूलेंगे और न इस टॉपिक को भूल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी जर्नी हमें सिखाई जिस जर्नी को हम सद्भावना युक्त यात्रा के साथ साथ पूरी करेंगे। आप जब जब जहां जहां जाएंगे, आपको ये सारे सिग्नल के साथ साथ कैसे सद्भावना बनाकर रखना है वो भी याद रहेगा। तो हम स्वामी भाई को तहे दिल से बहुत बहुत आभार करते हैं।